आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी वसीयत का जंजाल भाग 6। कहानी में अभी तक आपने सुना कराली बाबू की हत्या की जांच ब्योमकेश के हाथों होती है और वो बारी बारी से उन लोगों से पूछताछ करता है जो उस घर में रहते थे जहां कराली बाबू की हत्या हुई। इस क्रम में सुकुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी बहन सत्यवती ब्योमकेश के घर आकर कहती है कि उसका भाई बेकसूर है। वो उस रात की पूरी कहानी बताती है जब कराली बाबू की हत्या हुई। अब आगे। सत्यवती के जाने के बाद दरवाजा बंद करके ब्योमकेश आकर बैठ गया और अपनी घड़ी देखकर बोला, अरे 7 बज गए। फिर अपने मन में हिसाब लगाने के बाद बोला, अभी काफी समय है। उत्सुकतावश मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ब्योमकेश तुम्हें अब क्या लग रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें सारे तथ्यों की जानकारी हो गई है। ब्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा, सब कुछ नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम जो भी कहो, लेकिन यह निश्चित है कि वो सुकुमार नहीं है, भले ही उसके खिलाफ सबूत मौजूद हो। ब्योमकेश ने हंसकर कहा, तो फिर कौन है? मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से वो सुकुमार नहीं है। ब्योमकेश चुप रहा। उसने सिगरेट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा। मुझे लगा अब वो और कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी शांति से केस की विचित्र उलझनों के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने एकाएक पूछा, मेरे ख्याल से तुम सत्यवती को सुंदर नहीं कह सकते, है ना? चकराकर मैंने उसकी ओर देखा और बोला, ऐसा क्यों पूछते हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा था, मैं समझता हूं ज्यादातर लोग उसे बहुत सावली कहेंगे। मेरे मस्तिष्क में यह बात घुस नहीं पा रही थी कि इस केस का सत्यवती के रूप से क्या नाता है, लेकिन कई बार ब्योमकेश के दिमाग के विचित्र मार्ग की कल्पना करना असंभव हो जाता है। मैंने गंभीरता से विचार करके कहा, यह सही है कि लोग सत्यवती को सावली कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कुरूप हरगिज नहीं है। इतना सुनकर ब्योमकेश हंसकर उछल पड़ा और बोला, तुम्हारा मतलब है जैसा कि कवि ने कहा है, काली है वो, तुम कहते हो काली रात से भी काली, पर मैंने उन काली हिरणी जैसी आंखों को देखा है। ठीक है, ये बताओ जित, तुम्हारी सही उम्र क्या है? मैंने फिर चकराकर पूछा, उम्र? मेरी उम्र? जैसे कराली बाबू की मौत के रहस्य का हल मेरी आयु में छुपा हो। ब्योमकेश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कुछ गुणा भाग करके बताया कि मेरी सही आयु 19 वर्ष 5 महीने और 11 दिन है। पर क्यों? ब्योमकेश ने संतोष की सांस ली और कहा, तो तुम मुझसे पूरे 3 महीने बड़े हो, इस बात का ध्यान रखना, भूलना नहीं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरे भाई कुछ नहीं, मेरा सिर समस्या को लेकर चकराने लगा है, चलो आज रात को फिल्म देखते हैं। ब्योमकेश कभी सिनेमा नहीं जाता, सिनेमा या नाटक उसे पसंद नहीं था, इसलिए पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर बोला, आज तुम्हें क्या हुआ है, क्या वाकई पागल हो गए हो? ब्योमकेश ने हंसकर कहा, कोई ताज्जुब नहीं, मेरा जन्म चंद्रराशि में हुआ है और श्रीमान भट्टाचार्य जी ने मेरी जन्मपत्री देखकर बताया था कि यह बालक चंद्रमा के प्रभाव में पागल भी हो सकता है, लेकिन हमें देर हो रही है, चलो जल्दी से खाना खाकर निकलते हैं। मैंने सुना है कि चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है। इसलिए खाना खाकर हम लोग चित्रा पहुंचे। फिल्म 9:30 बजे शुरू हुई। फिल्म लंबी थी इसलिए 12 बजे के करीब खत्म हुई। हमारा घर कुछ दूरी पर था, कुछ एक बसें अभी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं बस स्टॉप की ओर बढ़ा, ब्योमकेश बोला, नहीं चलो हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं। वो तेजी से कदम बढ़ाकर चलने लगा। जब कार्नवालिस स्ट्रीट के बाद वो एक छोटी गली में घुसा तो मुझे समझ आ गया कि हम लोग कराली बाबू के घर की ओर जा रहे हैं। मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहां जाकर वो क्या करना चाह रहा था। बहरहाल मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता गया। हम लोगों की चाल साधारण चाल से कुछ तेज थी, फिर भी हमें वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। घर के सामने सड़क की लाइट जल रही थी। ब्योमकेश ने लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ठीक उस समय सभी घड़ियों में 12 बजे का अलार्म बज उठे। ब्योमकेश ने खुश होकर मेरे पीठ पर एक हाथ मारा और बोला, वाह काम हो गया, चलो अब टैक्सी लेते हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे हम कराली बाबू के घर पहुंचे। पुलिस वालों के साथ विधु बाबू मौजूद थे। ब्योमकेश को देखकर पहले तो वो कुछ संकोच में पड़ गए, फिर अपने आप को संभालते हुए गंभीर आवाज में बोले,
ब्योमकेश बाबू, शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया है। वास्तव में वही हत्यारा है। मैं शुरू से ही जान गया था, पर इसका प्रपंच देख रहा था।
वाकई? ये कहकर ब्योमकेश ने विधु बाबू की बड़ी बड़ी आंखों को ध्यान से देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कब वो कोई नया गुल खिला दे। ये सब देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के चेहरों पर हंसी फूट पड़ी और छिपाने के प्रयास में उन्होंने अपने चेहरे दूसरी ओर घुमा दिए। विधु बाबू ने कुछ संदेह के लहजे में पूछा,
आ जाने की कोई खास वजह?
ब्योमकेश बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे पता लगा है कि नई वसीयत पाई गई, मैंने सोचा एक नजर देख लूंगा। काफी देर तक वे सुलझन में रहे कि वसीयत ब्योमकेश को दिखाई जाए या नहीं। अंत में अनिच्छा से अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेज निकालकर ब्योमकेश की ओर बढ़ाया और बोले,
ध्यान से फाड़वाड़ मत देना, यह वसीयत सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। कराली बाबू की हत्या करके सुकुमार चोरी करके यह वसीयत ले आया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया।
अच्छा, आपको मालूम है कहां छिपाया?
अपने कमरे में 3 अलमारियों के नीचे।
क्या सुकुमार गिरफ्तारी के समय कुछ बोला था?
क्या बोलता, वही जो सब कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम और चौंकने का नाटक।
ब्योमकेश ने दस्तावेज को चारों ओर से जांचा, फिर बड़ी सावधानी से खोलकर पढ़ने लगा। मैंने भी अपनी गर्दन तिरछी करके ब्योमकेश के पीछे से देखा। एक सादे कागज पर टाइप किया गया था, आज सितंबर के 22वें दिन 1933, मैं पूरे होश हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूं। मेरी मौत के पश्चात मेरी सारी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सारी धनराशि का उत्तराधिकारी मेरा कनिष्ठ भतीजा फणिभूषण होगा। इससे पूर्व लिखी गई अन्य सारी वसीयतें बाकायदा रद्द और निष्फल की जाती हैं। हस्ताक्षर कराली चरण बासु। वसीयत पढ़ने के बाद ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें एक नए उत्साह से चमकने लगी। वो बोला,
विधु बाबू, ये तो कमाल हो गया, ये वसीयत दो।
उसने अपने आप को रोक लिया और दस्तावेज को विधु बाबू की ओर बढ़ा दिया। विधु बाबू ने वसीयत को आश्चर्य में दोबारा शुरू से अंत तक सावधानी से पढ़ा और फिर सिर उठाकर पूछा,
क्या है इसमें, मुझे तो कुछ नहीं दिखा।
ये नहीं देखा? ब्योमकेश ने हस्ताक्षर के नीचे रिक्त स्थान को दिखाते हुए कहा। विधु बाबू ने जब वो देखा तो उनकी आंखें फैल गई और मुंह से निकला, ओह, गवाहों के नाम। इतने में ब्योमकेश बोला, शांत। उसने शांत रहने का इशारा किया और दरवाजे की आहट लेने लगा। कुछ देर रुकने के बाद वो धीरे से उठा और आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और भक्क से दरवाजा खोल दिया। माखनलाल खड़ा चोरी से बातचीत सुन रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश उसकी बाजुओं को खींचते हुए उसे अंदर ले आया और उसे कुर्सी पर पटक दिया।
इंस्पेक्टर, इस पर नजर रखना, भागने ना पाए, इसके मुंह को भी बंद कर दो।
माखन दहशत में आधा हो गया था। उसने बोलना चाहा,
मैं? चुप रहो, एकदम चुप। विधु बाबू, मजिस्ट्रेट से एक दूसरा वारंट मंगवाइए, अपराधी के नाम की जगह खाली ही रखें, उसे हम बाद में भर लेंगे।
वो विधु बाबू के नजदीक पहुंच गया और झुककर उनके कान में बोला, तब तक आप इसकी पूरी खबर ले लें। आश्चर्य भरे लहजे में विधु बाबू बोले,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा।
बाद में बताऊंगा, इस बीच कृपा करके वारंट मंगा लें, आओ जित, चलते हैं। ब्योमकेश तेजी से सीढ़ियां चढ़कर फणिभूषण के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हम लोगों को देखकर फणि चौंक गया, उसके मुंह से निकल गया,
ब्योमकेश बाबू।
हम लोग कमरे में आ गए। अब ब्योमकेश की फुर्ती प्रायः गायब हो गई थी। हंसते हुए बोला,
आपको जानकर खुशी होगी कि हमें अब पता लग गया है कि कराली बाबू का वास्तव में हत्यारा कौन है।
फणि एक फीकी मुस्कान के साथ बोला,
हाँ, मैंने सुना है कि सुकुमार बाबू को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता।
ये तो है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। उसके कमरे से एक नई वसीयत मिली है जिसमें संपत्ति का हकदार आपको बनाया गया है।
फणि बोला,
यह तो मैंने भी सुना है, जब से मुझे यह पता लगा है मेरा मन खट्टा हो गया है। महज कुछ हजार रुपयों के लिए काका को जीवन खोना पड़ा।
उसने गहरी सांस लेते हुए कहा,
संपत्ति, इन सभी पापों की जड़। मेरे लिए सारी संपत्ति छोड़ गए, पर मैं खुश नहीं हूं। ब्योमकेश बाबू, मैं चाहता था कि मुझे संपत्ति भी ना देते पर जीवित तो रहते।
ब्योमकेश बुक शेल्फ के पास खड़ा पुस्तकों को देख रहा था, मन ही मन में बोला,
सही है, संपत्ति कभी सुख नहीं देती, कहावत सुनी है ना? ये कौन सी पुस्तक है? फिजियोलॉजी? अरे वाह, सुकुमार की पुस्तक है।
ब्योमकेश ने पुस्तक निकालकर उसके मुख्य पृष्ठ को देखकर कहा। फणी धीरे से हंसकर बोला,
हाँ, सुकुमार अक्सर मुझे मेडिकल की पुस्तकें पढ़ने को देता था। जीवन भी कितना विचित्र है। इस घर में केवल सुकुमार ही ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं अपना मित्र समझता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी ज्यादा। और वही,
ब्योमकेश ने कुछ और पुस्तकें नीचे उतारी और आश्चर्य में कहा,
आप तो खासे पढ़ाकू व्यक्ति हैं, है ना? और क्या आप सभी पुस्तकों में पढ़ने के समय मार्क लगाते हैं?
फणी बोला,
हाँ, पढ़ने के सिवाय मेरी और कोई हॉबी नहीं है, पुस्तकें ही मेरी साथी हैं। केवल सुकुमार मेरे पास हर शाम आकर बैठता था। ब्योमकेश बाबू, मेहरबानी करके मुझे ये बताएं कि क्या वाकई सुकुमार ने ही ये किया है? इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है?
ब्योमकेश ने कुर्सी पर बैठकर कहा, अपराधी के खिलाफ जो सबूत निकला है उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश शेष नहीं है। आइए इधर बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूं। फणी उसके पास पलंग किनारे बैठ गया। देखिए, हत्या दो प्रकार की होती है। एक वो जो अधिक आवेश में आकर की जाती है, जिसे हम आवेश में हत्या अथवा क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। दूसरी वो हत्याएं हैं जो पहले से सोची समझी गई तथा पूर्व नियोजित होती हैं। आवेश की हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है, अधिकांश केसों में वो खुद ही स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब आदमी सोच समझकर पूर्व नियोजित हत्या करता है तो वो अपने ऊपर आने वाले सारे संदेहों को भी हटा देता है। ऐसे हालात में उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं मालूम होता कि अपराधी कौन है और दूसरों पर संदेह करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है कि हम हत्यारे के तरीके को जांच का केंद्र बिंदु बनाएं। इस केस में हमने एक विचित्र बात यह पाई कि हत्यारा चालाक और मूर्ख दोनों है। उसने हत्या बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक की है, पर हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छुपा दिए। आप ही बताइए, क्या यह जरूरी था कि हत्या के लिए सत्यवती की सुई का ही प्रयोग किया जाए? क्या शहर में सुइयों की कमी हो गई थी? और क्या वसीयत को इतनी सावधानी से छिपाना जरूरी था? क्या उसे फाड़कर फेंका नहीं जा सकता था? इस सब से क्या संकेत मिलते हैं? फणी अपनी ठोड़ी को अपनी हथेलियों में लिए सुन रहा था। उसने पूछा,
क्या?
ब्योमकेश बोला,
एक व्यक्ति जो स्वभाव से मन बुद्धि है वो चालाकी से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति चपल है वो मूर्ख का नाटक बड़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए यहां ये साफ है कि अपराधी चालाक है, लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं। लेकिन अपने को हमेशा सीधा साधा बनाने का प्रयास हमेशा सफल नहीं होता। इस केस में भी अपराधी ने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली है।
फड़ी ने पूछ लिया,
कौन सी गलतियां?
रुकिए। ब्योमकेश ने अपनी पॉकेट से एक सफेद कागज निकाला। मैं पहले इस घर का नक्शा बनाना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई पेंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं ये नक्शा बना सकूं? फणी के पलंग पर तकिए के पास एक पुस्तक पड़ी हुई थी। उसने पुस्तक से लाल पेंसिल निकालकर ब्योमकेश को दे दी। ब्योमकेश ने लाल पेंसिल को सावधानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला,
दरअसल में अब नक्शा बनाना उतना जरूरी नहीं है, मैं शब्दों में ही बता देता हूं। अपराधी ने तीन भयंकर भूलें की। पहली ये कि उसने प्रेज एनाटॉमी पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे मार्क लगाया। दूसरी, उसने भारी अलमारी खिसकाने में काफी शोर किया। और तीसरी ये कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था।
फणी के मुंह का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाने का प्रयास किया,
कानून का ज्ञान नहीं?
नहीं,
ब्योमकेश ने दोहराया,
और यही कारण है उसकी इतनी सफाई से बनाई गई योजना फेल हो गई।
फणी का गला सूख गया। वो भर्राई आवाज में बोला,
मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया।
ब्योमकेश ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया,
यह वसीयत जो सुकुमार के कमरे से मिली है वो कानून की नजर में गैर कानूनी और व्यर्थ है।
क्योंकि उसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है।
लगा जैसे फणी बेहोश हो जाएगा। वो काफी देर तक चुपचाप पत्थर की तरह फर्श पर नजर गड़ाए बैठा रहा, फिर खोई नजरों से अपने सिर के बालों को हाथों से नोचते हुए बुदबुदाया,
सब व्यर्थ, सब बेकार गया।
नजरें ऊपर उठाकर बोला,
ब्योमकेश बाबू, क्या आप मुझे अकेले छोड़ देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
ब्योमकेश खड़ा होकर बोला, मैं आपको आधे घंटे का समय देता हूं, अपने आप को तैयार कर लें। दरवाजे पर जाकर वो मुड़कर बोला, आपने सिलाई का होल्डर फेंक दिया है ना? लिया तो था आपने, क्योंकि वो मुझे सत्यवती की सिलाई टोकरी में नहीं मिला। पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफार्म के साथ नहीं छोड़ा। शायद जल्दबाजी में दिमाग से निकल गया है ना। लेकिन ये तो बताइए, क्लोरोफार्म लाया कौन? माखनलाल?
फणी तब तक तकिए पर पीछे की तरफ लुढ़क गया था। वो भर्राई आवाज में बोला,
आधा घंटे बाद आइए।
ब्योमकेश ने कहा।
अच्छा।
दरवाजा बंद कर दिया। हम नीचे आकर बैठ गए। माखनलाल पुलिस के पास वैसे ही बैठा हुआ था। ब्योमकेश ने नाराज होकर कर्कश आवाज में कहा,
फणी को क्लोरोफार्म लाकर दिया था?
माखनलाल ने चौंक कर कहा,
मैं नहीं जानता।
सच सच बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारा नाम वारंट में लिख दूंगा।
माखन फूट फूट कर रोने लगा।
सर, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं सब में शामिल नहीं हूँ। फणी ने मुझसे कहा था कि उसे नींद नहीं आती, अगर क्लोरोफार्म की एक बूंद मिल जाती इसी से।
ठीक है विदु बाबू, आप इसे छोड़ सकते हैं।
जैसे ही माखन को छोड़ा वो भागा। ब्योमकेश ने विदु बाबू से पूछा, क्या वारंट अभी तक नहीं आया?
नहीं, पर आता ही होगा। लेकिन वो किसके लिए है?
कराली बाबू के हत्यारे के लिए।
विदु बाबू भड़क उठे और सिर ऊपर उठाकर बोले,
ब्योमकेश बाबू, ये वक्त हंसी मजाक का नहीं है। कमिश्नर साहब, क्या जरा सा आपको मानते हैं आप मुझ पर रौब झाड़ने लगे? ये भी मैंने सह लिया, पर अब मैं आपके ये बेसिर पैर के मजाक बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं।
अरे मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यही सच्चाई है, बिल्कुल साफ। ध्यान से सुनिए।
और ब्योमकेश ने संक्षेप में सारी बातों का ब्यौरा दे दिया। विदु बाबू क्षण भर के लिए आश्चर्य में जड़बत हो गए, फिर चिल्ला उठे,
अगर ऐसा है तो आपने उसे छोड़ क्यों रखा है? अगर वो भाग जाए तो?
नहीं नहीं, वो नहीं भागेगा। वो बेकसूर होने की दलील देगा और यही हमारी त्रुप चाल है, क्योंकि अदालत में हमारे लिए उसे दोषी ठहराना बहुत मुश्किल होगा।
और अदालत में ज्यूरियों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो दोषी को मुक्त करने का बस एक मौका चाहिए।
ये तो मैं भी जानता हूं, पर
विदु बाबू फिर कुछ चिंतन में लग गए। ठीक आधा घंटे बाद हम फड़ी भूषण के कमरे में गए। विदु बाबू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और पहले घुसे और आगे जाकर एकाएक रुक गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कहानी में आगे क्या होता है ये सुनिए अगले भाग में, यानी भाग 7 में।